एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, स्टीफन कवे की फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट।
हाँ बिल्कुल।
और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कोई टिप वाली किताब नहीं है।
नहीं नहीं, उससे बहुत आगे की बात है।
ये तो ये पूछती है कि भाई हम जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वाकई वही जीना चाहते हैं या बस भागे जा रहे हैं।
सही बात है, और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है। हर कोई बिजी है ना।
हाँ बहुत ज्यादा।
तो ये किताब एक तरह से आईना दिखाती है कि कहीं हम जरूरी कामों को छोड़कर सिर्फ उन कामों में तो नहीं उलझ गए जो बस सामने दिख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। इसका फोकस इसी पर है, हमारी जिंदगी में जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, मतलब रोल्स, जैसे एक माँ या पिता, एक प्रोफेशनल, एक दोस्त, एक इंसान।
हाँ हाँ।
और हमारे जो असली लक्ष्य हैं, गोल्स, उनको पहचानना और उनको क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी के सेंटर में लाना।
तो आज की चर्चा का मकसद यही रहेगा कि कवि के इन विचारों को थोड़ा और खोलें, समझें।
बिल्कुल।
और देखें कि कैसे हम वो जो घड़ी की टिक टिक है ना, उससे थोड़ा ऊपर उठकर अपने अंदर के कंपास के हिसाब से जी सकते हैं, मतलब अपने मूल्यों और लक्ष्यों के हिसाब से।
और इसमें ये भूमिकाओं और लक्ष्यों को प्राथमिकता देना कैसे किया जाए, इस पर खास ध्यान देंगे।
चलिए तो पहले लेखक की बात कर लेते हैं। स्टीवन आर कवि, 1932 से 2012 तक।
हाँ, स्टीवन कवि को तो ज्यादातर लोग उनकी वो कमाल की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से जानते हैं।
हाँ वो तो क्लासिक है।
बिल्कुल। पर वो सिर्फ लेखक नहीं थे, वो एक बहुत माने हुए लीडरशिप एक्सपर्ट थे, टीचर थे, सलाहकार थे। हार्वर्ड से MBA फॉर डॉक्टरेट, मतलब उनकी बातों में वजन तो था ही।
और ये किताब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये असल में उन 7 आदतों में से जो तीसरी आदत थी ना, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
जरूरी काम पहले करें,
उसी का विस्तार है। पर कवि की जो खास बात थी वो सिर्फ आदतें गिनाना नहीं थी।
नहीं,
उनका जोर था सिद्धांत केंद्रित जीवन पर, प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग।
अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि हमारी जिंदगी कुछ पक्के यूनिवर्सल सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जैसे ईमानदारी, योगदान देना, सबकी इज्जत करना, इस तरह की चीजें।
ओके, तो ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है, एक फलसफा है। उनकी ताकत यही थी कि वो बड़े गहरे विचारों को बड़े सरल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समझा देते थे।
चलिए अब किताब की मेन आइडिया पर आते हैं। कवि क्या कह रहे हैं असल में?
कवि का कहना है कि जो पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट है ना
जी,
जो बस कैलेंडर देखो, टू डू लिस्ट बनाओ, वो काफी नहीं है।
क्यों?
क्योंकि वो हमें कुशल तो बना सकता है, मतलब एफिशिएंट, हम फटाफट काम निपटा लेंगे, पर जरूरी नहीं कि हम प्रभावी हों, इफेक्टिव हों।
अच्छा, कुशल और प्रभावी में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कुशल मतलब काम जल्दी करना, प्रभावी मतलब सही काम करना। सवाल ये है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं जो असल में मायने रखते हैं?
ये बात तो सोचने वाली है।
हाँ, तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, तनाव में रहते हैं,
जिनको लगता है कि दिन खत्म हो गया पर पता नहीं क्या किया।
बिल्कुल, लिस्ट तो टिक हो गई, पर क्या वो काम किए जिनसे जिंदगी बेहतर बनती है? अपने रिश्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने सपनों के लिए वक्त निकाला।
तो कवि का तर्क क्या है इसके पीछे?
उनका मेन तर्क है अर्जेंसी एडिक्शन, मतलब हर काम तुरंत करने की लत।
अर्जेंसी एडिक्शन, ये क्या चीज है?
हम घड़ी के गुलाम बन गए हैं, क्लॉक। जो काम सामने है, जो चिल्ला रहा है, जिसकी डेडलाइन आज है, हम उसी में फंस जाते हैं।
हाँ ये तो होता है।
कवि कहते हैं घड़ी नहीं, कंपास देखो। कंपास, आपके सिद्धांत, आपके मूल्य, आपकी जिंदगी की दिशा क्या है, उसको फॉलो करो।
घड़ी बनाम कंपास, वाह।
यही है वो बड़ा बदलाव। तात्कालिकता यानी अर्जेंसी को छोड़कर महत्व यानी इम्पोर्टेंस को देखो, यहीं से सब बदलता है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के कुछ खास हिस्सों को देखते हैं।
हाँ, कवि शुरुआत ही एक बड़े तीखे सवाल से करते हैं।
कौन सा सवाल?
वो पूछते हैं, मरते समय कितने लोग ये अफसोस करते हैं कि काश ऑफिस में थोड़ा और टाइम बिता लिया होता।
ओह, ये तो सीधा नस पर हाथ रखने वाली बात है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं, इसमें कितना फर्क है।
और यहीं से वो अर्जेंसी एडिक्शन की बात करते हैं ना।
हाँ, होता क्या है कि जो काम अर्जेंट है वो दिखता है, वो प्रेशर डालता है, फोन बजता है, ईमेल आता है,
मीटिंग बुलानी पड़ती है।
हाँ, और उसे निपटाकर हमें एक फौरी राहत मिलती है, लगता है कुछ कर लिया,
जबकि जो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है,
वो शायद शांत रहता है। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना, सेहत के लिए सोचना, बच्चों से बात करना,
इनके लिए हमें खुद पहल करनी पड़ती है।
सही कहा। और कभी कहते हैं कि ये जो अर्जेंसी की लत है ना, ये हमें स्ट्रेस देती है, बर्न आउट करती है, हमारे रिश्ते कमजोर करती है, हम बस आग बुझाने में लगे रहते हैं।
तो बाग कौन लगाएगा?
वही तो, इस जाल से निकलने के लिए कभी कहते हैं अपनी चार बुनियादी मानवीय जरूरतों को समझो।
चार जरूरतें कौन सी?
पहली, जीना,
लाइव,
मतलब हमारी शारीरिक जरूरतें, पैसा, सुरक्षा। दूसरी, प्यार करना, लव,
लव,
हमारे रिश्ते, अपनापन, समाज।
ओके।
तीसरी, सीखना, लर्न,
हाँ,
हमारा दिमाग, ज्ञान, विकास। और चौथी, एक विरासत छोड़ना, लीव अ लेगेसी,
मतलब हमारा योगदान, कोई मकसद, आध्यात्मिकता, जीना, प्यार करना, सीखना और विरासत छोड़ना, लिव लव लर्न लीव अ लेगेसी।
हाँ। और कवि कहते हैं कि एक भरपूर और असरदार जिंदगी वही है जिसमें इन चारों का बैलेंस हो।
और हमारी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं जिंदगी में, माँ, पिता, प्रोफेशनल, दोस्त, वो इन्हीं जरूरतों से जुड़ी हैं।
बिल्कुल, जब हम अपनी हर भूमिका में इन जरूरतों का ध्यान रखते हैं तभी हमें वो संतुष्टि मिलती है।
ये दिलचस्प है। तो इस बैलेंस को पाने का तरीका क्या है?
यहीं पर कवि अपना सबसे मशहूर टूल लाते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स।
हाँ, वो चार डब्बों वाला।
वही, ये हमारे सारे कामों को दो पैमानों पर रखता है, पहला कितना अर्जेंट है, दूसरा कितना इम्पोर्टेंट है।
ठीक है,
इससे चार क्वाड्रेंट या हिस्से बनते हैं।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है ना।
पहला क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट वन,
अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट भी, मतलब संकट, एकदम जरूरी डेडलाइन, बड़ी समस्याएं, यहाँ तो रहना ही पड़ता है कभी कभी।
पर ज्यादातर यहाँ रहना मतलब हम बस रिएक्ट कर रहे हैं।
सही।
फिर है क्वाड्रेंट टू, इम्पोर्टेंट पर अर्जेंट नहीं।
ये है असली जगह।
बिल्कुल, यही जादू होता है।
प्लानिंग, तैयारी, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, सेहत, नए मौके तलाशना, सब यहीं आता है।
यहीं से लॉन्ग टर्म में फायदा होता है।
हाँ, फिर है क्वाड्रेंट थ्री, अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट नहीं।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
हाँ, ये धोखे वाला क्वाड्रेंट है। कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों के छोटे मोटे काम जो लगते अर्जेंट हैं पर असल में आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ हम दूसरों की प्रायोरिटी पे काम कर रहे होते हैं।
और चौथा
क्वाड्रेंट फोर, ना अर्जेंट ना इम्पोर्टेंट, ये तो सीधी सीधी टाइम बर्बादी है, फालतू टीवी देखना, बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना।
ओके, तो चार क्वाड्रेंट हो गए। कवि का मेन पॉइंट क्या है इस मैट्रिक्स को लेकर?
उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग और पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट वन और थ्री में ही फंसे रहते हैं।
हाँ, जो अर्जेंट है उस पे फोकस करते हैं,
जबकि जो असल में प्रभावी लोग हैं वो अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा क्वाड्रेंट टू में लगाते हैं।
अच्छा, पर वो तो अर्जेंट नहीं है।
इसीलिए तो वो समस्याएं बनने से पहले उन पर काम करते हैं, वो तैयारी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सीखते हैं। जब आप क्वाड्रेंट टू में ज्यादा समय लगाते हैं तो क्वाड्रेंट वन की जरूरतें अपने आप कम हो जाती है, संकट कम आते हैं।
माल का आइडिया है, मतलब प्रोएक्टिव बनना, रिएक्टिव नहीं।
एग्जैक्टली।
पर सवाल वही, क्वाड्रेंट टू के लिए समय कहां से लाएं? दिन तो 24 घंटे का ही है।
यहां आती है हिम्मत की बात। कवि कहते हैं आपको ना कहना सीखना होगा।
ना कहना किसको?
क्वाड्रेंट थ्री और फोर की चीजों को, उन कामों को जो अर्जेंट तो लगते हैं पर आपके लिए जरूरी नहीं है, और कभी कभी उन अच्छे मौकों को भी जो आपके मुख्य लक्ष्यों या भूमिकाओं से मेल नहीं खाते।
पर ना कहना तो मुश्किल होता है।
मुश्किल होता है, लेकिन ये ना आता कहां से है? ये आता है आपके अंदर जल रहे एक बड़े हां से।
बड़ा हां मतलब?
मतलब जब आप अपनी सबसे जरूरी चीजों के लिए, अपने लक्ष्यों, अपने मूल्यों, अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए पूरे दिल से हां कहते हैं तो कम जरूरी चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान है।
वाह, ये बहुत गहरी बात है।
और इसी से जुड़ा है वो बिग रॉक्स वाला उदाहरण, बड़े पत्थरों वाला।
हाँ, वो कहानी मैंने सुनी है, एक जार वाली।
हाँ, सोचिए, एक जार है, आपके पास कुछ बड़े पत्थर हैं, कुछ कंकड़, थोड़ी रेत और पानी।
ठीक है।
अगर आप पहले रेत और कंकड़ भर देंगे तो क्या बड़े पत्थर आ पाएंगे?
नहीं, जगह ही नहीं बचेगी।
लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डाल दें
तो कंकड़, रेत, पानी उनके आसपास अपनी जगह बना लेंगे।
बिल्कुल। तो ये बड़े पत्थर क्या हैं?
हमारी सबसे जरूरी चीजें, हमारी प्राथमिकताएं।
हाँ, हमारे क्वाड्रेंट टू के लक्ष्य जो हमारी अलग अलग भूमिकाओं से जुड़े हैं। कवि कहते हैं इन्हें अपने हफ्ते में सबसे पहले जगह दो, शेड्यूल करो।
पर कैसे, रोज की प्लानिंग में तो ये मुश्किल लगता है।
इसीलिए कवि रोज की प्लानिंग के बजाय साप्ताहिक प्लानिंग पर जोर देते हैं, वीकली प्लानिंग,
हफ्ते की प्लानिंग।
हाँ, हर हफ्ते हो सके तो रविवार को बस आधा घंटा निकालिए आने वाले 7 दिनों को प्लान करने के लिए।
आधा घंटा बस?
हाँ, इसके कुछ स्टेप्स हैं।
बताइए।
पहला, अपने मिशन या मूल्यों को याद करें। दूसरा, इस हफ्ते आपकी मुख्य भूमिकाएं रोल्स क्या हैं, जैसे प्रोफेशनल, पेरेंट, पार्टनर, दोस्त, खुद के लिए।
ठीक है।
तीसरा, हर भूमिका के लिए 1-2 बड़े पत्थर यानी सबसे जरूरी क्वाड्रेंट 2 लक्ष्य गोल्स तय करें, जैसे टीम के साथ जरूरी मीटिंग, बच्चे के साथ खेलना, कोई जरूरी रिपोर्ट शुरू करना, एक्सरसाइज।
ओके, लक्ष्य तय हो गए। फिर
चौथा और सबसे जरूरी, इन बड़े पत्रों के लिए अपने कैलेंडर में पहले टाइम ब्लॉक करें, जैसे ये कोई मीटिंग हो,
अपॉइंटमेंट की तरह।
बिल्कुल, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। फिर बाकी चीजें इसके आसपास फिट करें। पांचवा, हफ्ते भर जब भी कोई नई चीज आए अपनी प्लानिंग के हिसाब से फैसला लें। और छठा, हफ्ते के आखिर में देखें कि क्या चला क्या नहीं, अगले हफ्ते क्या बेहतर करें।
ये साप्ताहिक योजना का आइडिया मुझे बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। ये हमें अपनी सारी भूमिकाओं में बैलेंस बनाने में मदद कर सकता है ना?
बिल्कुल, आप सिर्फ काम के बड़े पत्थर नहीं बल्कि परिवार, सेहत, पर्सनल ग्रोथ सबके बड़े पत्थर डाल सकते हैं।
और अगर काम बहुत ज्यादा हो
तो कभी स्टुअर्डशिप डेलीगेशन की बात करते हैं।
स्टुअर्डशिप डेलीगेशन, ये क्या है?
ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि जाओ ये कर दो, ये है परिणाम की जिम्मेदारी देना। आप बताते हैं कि क्या नतीजा चाहिए, क्या नियम है, क्या मदद मिलेगी।
और फिर सामने वाले को उसे अपने तरीके से करने की आजादी देते हैं।
हाँ, इससे आपका समय बचता है और दूसरे का विकास भी होता है। ये भी क्वाड्रेंट 2 का काम है, दूसरों को सशक्त बनाना।
तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ काम निपटाने की ट्रिक नहीं है?
नहीं, ये सही काम करने, अपने मूल्यों के हिसाब से जीने और जिंदगी के सभी जरूरी भूमिकाओं में तालमेल बिठाने की गाइड है।
और इसका इनाम सिर्फ ज्यादा काम नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष है।
एग्जैक्टली।
चलिए, तो जो मुख्य बातें या थीम इस चर्चा से निकली है उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं।
हाँ, पहला तो वही प्रभावशीलता बनाम कुशलता, कंपास पहले घड़ी बाद में, सही दिशा जरूरी है रफ्तार नहीं।
दूसरा, वो तात्कालिकता का अत्याचार या कहें हर चीज तुरंत करने की धुन, इसे पहचानना कि कैसे ये हमें जरूरी चीजों से दूर ले जाती है।
तीसरा, क्वाड्रेंट 2 की शक्ति, ये वो जगह है जहां असली बदलाव आता है। इसमें जानबूझकर, सोच समझकर समय लगाना होगा, यही हमारे असली लक्ष्य पूरे होते हैं।
चौथा, बिग रॉक्स का सिद्धांत, कितना सरल पर कितना पावरफुल, अपनी सबसे जरूरी चीजों को जो अक्सर हमारी अलग अलग भूमिकाओं से जुड़े लक्ष्य होते हैं उन्हें पहले शेड्यूल करना।
भारत में सोचे तो परिवार के लिए समय, अपनी सेहत, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये सब बड़े पत्थर हैं जिन्हें हम अक्सर टाल देते हैं।
सही बात है। पांचवा, साप्ताहिक योजना और भूमिकाओं का संतुलन, रोज की रिएक्टिव प्लानिंग से हटकर पूरे हफ्ते का नजरिया रखना, अपनी सभी भूमिकाओं को महत्व देना।
और छठा, इन सब का आधार सिद्धांत केंद्र जीवन, हमारे फैसले डर या दबाव से नहीं बल्कि हमारे गहरे मूल्यों से आने चाहिए।
किताब में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं ना?
हाँ, बहुत सी। एक तो वो जो बहुत मशहूर है, मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखें।
द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग।
सुनने में आसान है
पर करना, उसमें अनुशासन चाहिए, मतलब अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस बनाए रखना।
और एक और जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, कुंजी ये नहीं है कि आप अपने शेड्यूल पर क्या प्राथमिकता देते हैं बल्कि ये है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करते हैं।
हाँ, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। फर्क देखिए, पहले तय करें क्या जरूरी है, आपके बड़े पत्थर, आपके लक्ष्य, फिर उनके लिए टाइम निकालें, कैलेंडर में डालें। और ना कहने वाली बात भी बहुत जरूरी है, आपको तय करना होगा कि आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या हैं और साहस रखना होगा दूसरी चीजों को ना कहने का। और ऐसा करने का तरीका यह है कि आपके अंदर एक बड़ा हाँ जल रहा हो।
वो बड़ा हाँ आपकी मुख्य भूमिकाओं और लक्ष्यों के लिए आपकी कमिटमेंट है, उस हाँ के लिए ना कहना पड़ता है।
और आखिर में अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस का फर्क समझाने वाली लाइन, तात्कालिक मामले आमतौर पर दिखाई देते हैं, महत्व का संबंध परिणामों से है।
अर्जेंट मैटर्स आर यूजुअली विजिबल, इम्पोर्टेंस हैज टू डू विद रिजल्ट्स। ये याद रखना कि जो ज्यादा शोर मचा रहा है जरूरी नहीं कि वही सबसे जरूरी हो।
तो अब सबसे अहम सवाल, इन सब बातों को रोज की जिंदगी में लाएं कैसे?
सबसे पहला और सबसे असरदार कदम, साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते वो आधा घंटा। अपनी भूमिकाएं सोचें, हर एक के लिए बड़े पत्थर, लक्ष्य तय करें और उन्हें कैलेंडर में जगह दें। ये आदत बदल सकती है सब कुछ।
ऑफिस में इसका मतलब होगा कि सिर्फ मीटिंग और ईमेल ही नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच, टीम बिल्डिंग, नई स्किल सीखने जैसे क्वाड्रेंट 2 कामों के लिए भी समय निकालना।
हाँ, और शायद स्टीवर्डशिप, डेलीगेशन का इस्तेमाल करना सीखना।
और निजी जिंदगी में
रिश्तों को बड़े पत्थर मानना। परिवार के साथ डिनर का टाइम, बच्चों के साथ खेलने का टाइम, पार्टनर से बात करने का टाइम, इन्हें जरूरी अपॉइंटमेंट की तरह मानना। ये हमारी लव की जरूरत और पारिवारिक भूमिकाओं को पूरा करता है।
और सेहत, वो तो अक्सर पीछे रह जाती है।
हाँ, तो एक्सरसाइज, आराम, हेल्दी खाना, इन्हें भी क्वाड्रेंट 2 प्राथमिकता मानकर शेड्यूल करना होगा। ये हमारी लिव की जरूरत है। जब आप इन्हें शेड्यूल करते हैं तो इनके होने की संभावना बढ़ जाती है।
और जब कोई नया काम आए तो उस मैट्रिक्स वाले चश्मे से देखना, क्या ये जरूरी है, क्या ये मेरी किसी भूमिका या लक्ष्य से जुड़ा है, इससे हाँ या ना कहना आसान होगा।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो है कंपास और घड़ी का फर्क। ये लगातार खुद से पूछना कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या बस तेज भाग रहा हूं। और साप्ताहिक योजना उस कंपास को हर हफ्ते कैलिब्रेट करने जैसा है।
मेरे लिए ये भूमिकाओं, रोल्स और बिग रॉक्स वाला आइडिया बहुत पावरफुल है। ये याद दिलाता है कि जिंदगी के कई पहलू हैं और हर भूमिका के अपने जरूरी लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राथमिकता देनी है। और ये साप्ताहिक योजना का तरीका इसे मुमकिन बनाने का एक ठोस रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ बातें नहीं, एक्शन है।
और आखिर में वो सिद्धांत केंद्रित जीवन वाली बात कि असली सफलता और शांति सिर्फ चीजें पाने में नहीं बल्कि अपने मूल्यों के साथ जीने में है। असरदार होने का मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं बल्कि सही काम करना और एक बैलेंस्ड, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है।
तो सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल सोचते हुए छोड़ जाते हैं। अगर आज से आप अपने जीवन में केवल एक बड़ा पत्थर, एक महत्वपूर्ण पर शायद अभी औजन नहीं लगने वाला लक्ष्य जो आपकी किसी खास भूमिका से जुड़ा हो, उसे नियमित रूप से शेड्यूल करना शुरू करें, तो वो क्या होगा और क्यों?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।